मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 15 सितंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के रूप में मैं आपसे कृषि विपणन संबंधी जो विधेयक संसद में लाया गया है इसके बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। आज के अखबारों में और कल के न्यूज़ में भी अब आपको हमेशा संसद में जो कुछ भी हो रहा है संसद की कार्यवाही के बारे में पढ़ने और सुनने को मिलेगा। और मैं आप लोगों को यूं कह लीजिए सतर्क करना चाहूँगा कि संसद में जो कुछ भी हो रहा है आप उसे ध्यान से सुने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बात को याद रखें, लेकिन उसकी कार्यवाही के बारे में कि क्या विधेयक लाए जा रहे हैं, वहाँ किस तरह की बहस हो रही है, आपको बहस देखनी नहीं है, न्यूज़ में जो बातें सामने आ रही हैं आपको उन पर ध्यान देना चाहिए। आज के अखबारों में आपने देखा कि संसद में जो प्रश्न काल होता था, जो शून्य काल होता था, उस पर जो नियंत्रण स्थापित किया गया है उसको लेकर के जो विपक्ष हैं उन्होंने काफ़ी बातें भी उठाई और उसका विरोध भी किया। इसके बारे में मैं शुरू में आपसे चर्चा कर चुका हूं। तो यह जो घटना घटित हुई है आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार घटित हुई, हालांकि ठीक है कोरोना महामारी जैसी घटना भी पहली बार घटित हुई आज़ाद हिंदुस्तान में, तो इस संदर्भ में आपको अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए। उसमें प्राइम मिनिस्टर का हमारे एक स्टेटमेंट है जो शायद आपके काम आ सकता है इसकी समीक्षा करने में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो हमारा शून्यकाल होता है और जो प्रश्नकाल होता है इसका 50% समय व्यर्थ जाता है, ये उनका स्टेटमेंट है। अब आप इसको भी एनालाइज कर सकते हैं कि क्या सच में व्यर्थ जाता है, या जब आप प्रश्न करेंगे और कोई उत्तर देगा और शून्यकाल को रखेगा तो बहुत स्वाभाविक है कि कुछ समय नष्ट होगा ही क्योंकि उसमें बहस होगी। तो ये भी आपकी एक समीक्षा का विषय हो सकता है और प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आपके लिए एक संदर्भ का काम कर सकता है। दोस्तों, एक सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय के पास एक जनहित याचिका आई है, मुझे लगता है कि इसके बारे में आप सबका ध्यान आकर्षित मुझे करना चाहिए, जो आज अखबारों में छपा है। वो जो जनहित याचिका दायर की गई है उसमें रिक्वेस्ट किया गया है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए, यानी यूं कह लीजिए कि जो हिंदू विवाह अधिनियम है जो 1955 में पारित हुआ है, देखिए कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, उसमें संशोधन किया जाना चाहिए, उस जनहित याचिका में कहा गया है। और संशोधन किस लिए किया जाना चाहिए? संशोधन इसलिए किया जाना चाहिए कि अभी जैसे जो समलैंगिक हैं, जो होमोसेक्सुअलिटी है, उन लोगों को विवाह करने का अधिकार नहीं है। आपको ध्यान होगा कि सन 2018 में बकायदे सुप्रीम कोर्ट ने अब समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। पहले यह अपराध माना जाता था, उसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है और उसके बारे में बकायदे एक्ट वगैरह भी सरकार लेकर के आ चुकी है, लेकिन अभी तक विवाह करने का अधिकार उनको नहीं दिया गया है कि वो विवाह कर सकें। तो इस याचिका में मांग की गई है कि उन्हें विवाह करने का अधिकार दिया जाए। तो अब सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय ने स्वाभाविक तौर पर केंद्र सरकार से इसके बारे में जवाब मांगा है, तो केंद्र सरकार तो यही कहेगी कि भाई अभी तक ऐसा कोई कानून है नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं, अगर ऐसा किया जाना है तो फिर वो कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, हो सकता है कि आगे कानून बनाया जाए और जब तक हम इस एक्ट में 1955 के एक्ट में संशोधन नहीं कर देते तब तक उनको ये अधिकार नहीं मिल जाता। और फिर केंद्र सरकार ने साफ साफ ये भी कहा है कि भाई जो याचिकाकर्ता है वो तो सीधे सीधे यही कह रहा है ना कि कानून बनाने को कह रहे हैं कि इस पर कानून बनाया जाए। खैर, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि समलैंगिक लोगों को भी विवाह करने का अधिकार दिया जाए, इससे संबंधित याचिका उच्चतम न्यायालय में पेश की जा चुकी है और इस पर बहस भी शुरू हो गई है, ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए। दोस्तों, यहां मैं एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा, जैसे अभी मैं जब बोल रहा हूं तो आपने देखा कि कभी उच्चतम न्यायालय मुंह से निकलता है, कभी सर्वोच्च न्यायालय मुंह से निकलता है, इनफैक्ट सच पूछे तो दोनों ही शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अनुवाद है सुप्रीम कोर्ट का वो उच्चतम न्यायालय है, तो बेहतर होगा कि हम उच्चतम न्यायालय शब्द का इस्तेमाल करें। दोस्तों, एक घटना जो पिछले सप्ताह की है जो मुझे थोड़ी सी महत्वपूर्ण लग रही है उसके बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आपने एक खबर पढ़ी होगी कि जो जियो है, जो रिलायंस धीरे धीरे आप देखिए कि किस तरीके से आगे बढ़ता चला जा रहा है। रिटेल कारोबार में वो पहले से ही है, या वो ई कॉमर्स में भी, जो रिलायंस जियो मार्ट है वो ई कॉमर्स में भी आ गया है, तो ये रिलायंस ग्रुप ही है। इसने जो अभी तक एक बहुत बड़ा रिटेल का ग्रुप था, फ्यूचर, प्रकाश वियानी का नाम आपने सुना होगा, फ्यूचर, उस ग्रुप को खरीद लिया है, उनके पूरे के पूरे कारोबार को खरीद लिया है, जो बहुत बड़ा रिटेलर था। इससे अब एक जो स्थिति बन रही है, और जो अर्थशास्त्री हैं या दूसरे लोग हैं जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, वो ये है कि इस तरह से जो बड़े हाउस हैं जैसे रिलायंस हैं, इसी तरह से एक ग्रुप है अदाणी, नाम सुनते होंगे बीच बीच में, आपको अखबारों में पढ़ने को मिलता होगा, जिनको अभी बहुत से एयरपोर्ट दिए गए हैं, है ना, उनको डेवलप करने का, रख रखाव करने का। हमारे देश के जितने भी ज़्यादातर जो एयरपोर्ट हैं और ज़्यादातर हमारे जो बंदरगाह हैं उनकी देखरेख अदाणी कर रहे हैं। और आप देखिए कि धीरे धीरे जो आपके मुकेश अंबानी हैं, इनका जो ग्रुप है रिलायंस ग्रुप, धीरे धीरे दूसरे क्षेत्रों में भी लगातार अपना विस्तार करता चला जा रहा है, और ये लोग जो छोटे छोटे ग्रुप हैं इनको खरीदते चले जा रहे हैं। तो एक सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि ये जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, ये जो छोटे छोटे ग्रुप हैं, इनको खत्म कर देंगे तो फिर इन छोटे लोगों का क्या होगा? जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, खुदरा व्यापारी हैं, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, ये कैसे सर्वाइव करेंगी? यह एक सवाल खड़ा हो रहा है। इसके बारे में आप लोगों को जब भी आर्टिकल्स एडिटोरियल पढ़ने को मिले, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी तथ्य मिले उन्हें नोट कर लीजिएगा, और जब भी मेरे सामने कोई ऐसा आर्टिकल आएगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा ही। दोस्तों, एक छोटी सी खबर है, अभी विधिवत तरीके से घोषणा नहीं हुई है जापान के प्रधानमंत्री का। आपको मालूम है कि इससे पहले के जो प्रधानमंत्री थे आबे जी, सिंजे आबे, जिनका नाम आप खूब सुनते होंगे क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे, व्यक्तिगत स्तर के संबंध थे, अपने हेल्थ को लेकर के उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। तो अब इनकी जो पार्टी है उसका नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसी पार्टी के एक लीडर हैं योशीहिदे सुगा, ये जापान के होने वाले प्रधानमंत्री हैं, ये जापान के प्रधानमंत्री बनेंगे। बस एक थोड़ी सी जानकारी आपको मुझे देनी थी। फ्रेंड्स, आइए अब मुख्य विषय पर बात करते हैं। इस विषय को चुनने का मेरा कारण ये है कि कुछ समय से आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि कुछ स्थानों पर जो किसान हैं वो सरकार के 3 अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं, जो आप ये कह लीजिए कृषि से संबंधित है, खासकर कृषि विपणन से संबंधित है। 3 अध्यादेश लाए गए थे, मई में लाए गए थे, उस समय हम लोगों ने तीनों अध्यादेश के बारे में बहुत विस्तार से बात की थी, यदि आपको स्मरण हो तो। देखिए, कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट कब बनता है, कैसे बनता है? उस समय विधेयक लाया गया या अध्यादेश जारी किया गया, तो डेफिनेटली चूंकि कृषि से संबंधित विधेयक था, अध्यादेश था, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अब जो संसद सत्र शुरू हुआ है तो उसमें अब अध्यादेश की तो अवधि केवल 6 महीने की ही रहती है, 6 महीने तक ही अध्यादेश जारी रह सकता है, तब उसको कानून बनाना है, तो आपको संसद का सत्र शुरू हो गया है, उसमें आपको अध्यादेश से संबंधित विधेयक लाना पड़ेगा, और विधेयक इस बार लाया जा रहा है। तो कुछ समय से फिर कुछ किसान इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, सभी किसान विरोध नहीं कर रहे हैं, सभी राज्यों के किसान इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों के किसान इसका विरोध कर रहे हैं जो 3 विधेयक आने वाले हैं, और कुछ राज्य भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा बस याद दिलाना चाहूंगा कि वो विधेयक कौन कौन से हैं, ताकि आपको स्मरण हो जाए, फिर तब आप जब इससे संबंधित कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। 3 मुख्यतः विधेयक हैं, मैं नाम पर नहीं जाता है ना कि उन विधेयकों के नाम क्या है, उनका संबंध किन विषयों से है, मेरी समझ से अगर मैं ये बताऊं तो आपके लिए ज्यादा उपयोगी होगा, नहीं तो चीज थोड़ी ना, बातें थोड़ी सी जटिल हो जाती हैं। देखिए, एक विधेयक का संबंध इस बात से था, जो सबसे प्रमुख सुधार के रूप में मैं इसे लेता हूं। आपने देखा है कि किस तरह से कहा जाता है कि मंडियों में जब किसान अपना सामान बेचने के लिए बाध्य हो जाते हैं तो किस तरह से जो मंडियां हैं उनका शोषण करती हैं, जो सामान खरीदने वाले लोग हैं, इसको लेकर के बहुत समय से बात हो रही है। तो केंद्र सरकार ने बकायदे एक अध्यादेश जारी किया, और उस अध्यादेश के लिए यह हो गया कि जो किसान है वो अपनी उपज, अपना उत्पाद देश के कहीं भी किसी भी व्यक्ति को और किसी भी संस्था को बेच सकते हैं। ये अब बाध्यता नहीं होगी कि वो मंडी में ही अपना सामान बेचें। तो एक प्रकार से ये कह लीजिए कि ये पूरे देश में एक बाजार की अवधारणा को लागू करने के लिए लाया गया था। और सच पूछे तो उस समय यह मांग भी की जा रही थी कृषि सुधार के तहत कि किसानों को यह आजादी मिलनी चाहिए। दूसरा जो अध्यादेश सरकार लेकर के आई वो बेसिकली ये था कि उसमें दो बातें हैं, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। पहला तो ये कि जैसे मान लीजिए किसी किसान के पास जमीन है और वो उस जमीन पर अच्छे से खेती नहीं कर पा रहा है, उसके लिए जो कैपिटल चाहिए, जो तकनीकी चाहिए, जो जानकारियां चाहिए उसके पास नहीं है, तो ऐसे में बकायदे वह अपनी इस जमीन को किसी भी कंपनी को, किसी भी व्यक्ति को जो फूड प्रोसेस या किसी को भी बकायदे पट्टे पर दे सकता है, अनुबंध कर सकता है उसे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसे कहते हैं, अनुबंध करके या तो वो उसे सौंप सकता है कि बकायदे आप लीजिए इस पर खेती कीजिए, साल भर में मुझे इसके बदले में इतना दे दीजिएगा, या फिर बकायदे खुद खेती कर रहा है, वो किसान ही खेती कर रहा है जिससे उसने अनुबंध किया है, वो उसको सारी इनपुट प्रोवाइड कर रहा है, अच्छे बीज दे रहा है, अच्छे खाद दे रहा है, तकनीकी जानकारियां दे रहा है, लागत लगा रहा है, वो दूसरा जो व्यक्ति है वो सब कर रहा है, या संस्था है या कंपनी है वो कर रही है, और उसके बदले में वो पहले से ही अपने जो अनाज है, जो भी पैदा करेगा, जो भी उत्पाद है, उसका मूल्य निर्धारित कर लेगा कि भाई इस कीमत पर आप खरीदेंगे। ये दो अलग अलग तथ्य, या तो वो जमीन ही सौंप देता है या फिर अपने उत्पाद के बारे में बात करता है और उससे मदद लेता रहता है, ये दो तरीके हैं। इससे ये लगा कि खेतों में जो तकनीकी है वो आ सकेगी, कैपिटल की कमी हमारे किसानों के पास उसकी पूर्ति हो सकेगी, हमारा उत्पाद बढ़ सकेगा और इससे अंततः जो हमारी फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनमें उनकी वृद्धि हो सकेगी, उनका विकास हो सकेगा। दूसरा ये अध्यादेश था। जो तीसरा अध्यादेश था वो था कि हमारा यहाँ जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है 1955, उसमें संशोधन किया गया और संशोधन करके कुछ वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया। आवश्यक वस्तुओं की सूची से उठाने का मतलब यह है कि अब इन वस्तुओं के लिए विशेष परिस्थितियों के अलावा आप किसी समय भी इसके लिए स्टॉक की सीमा नहीं रह जाएगी कि आप इतना ही स्टॉक रख सकते हैं, तो इससे ये चीज वस्तुएं भी मुक्त हो जाएंगी, खुले बाजार में जाने के लिए, बिकने के लिए मुक्त हो जाएंगी और हमारे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, उनको भी पर्याप्त रूप से इन वस्तुओं की आपूर्ति हो सकेगी। तो ये देखिए तीन मुख्य अध्यादेश लाए गए थे। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले का संबंध कृषि उत्पाद को आप पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हैं। जो दूसरे का संबंध था वो था कि आप अपनी जमीन, खेती की जो जमीन है उसके लिए अनुबंध कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति, संस्था या कंपनी से, या फिर आप अपने फसल को उत्पाद से पहले ही बेच सकते हैं, उसके लिए भी आप अनुबंध कर सकते हैं, जिसे आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। और तीसरा जो संबंध था वो ये था कि कुछ वस्तुओं को, जिनमें कुछ अनाज थे, दलहन थे, खाद्य तेल, आलू और प्याज, इनको आवश्यक वस्तु अधिनियम की सूची से बाहर करना था। अब कुछ किसान, जैसा कि मैंने कहा कि राज्य इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ बातों को लेकर के आशंकित है, उसकी वजह से वो विरोध कर रहे हैं। तो अब आपका ध्यान इन विरोध के तत्वों पर होना चाहिए कि उनकी क्या मांग है, वो डरे हुए हैं कहीं ऐसा ना हो कि सरकार जो न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है वो न्यूनतम मूल्य निर्धारण को अपने तरफ से हटा दे। मंडी का लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं राज्य सरकार की, उनकी मंडियों से जो आय होती है वो आय खत्म हो जाएगी। कुछ को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसानों की जो जमीन है वो कुछ समय के बाद वो कंपनी के हाथों में चली जाए, बड़े बड़े लोगों के हाथों में चले जाए, किसान का अपनी जमीन पर अधिकार ही न रह जाए। तो इस तरह से सबकी अपनी अपनी आशंकाएं हैं और मुझे विश्वास है कि जैसे ही ये विधेयक पारित होगा वैसे ही इसको लेकर के लेख लिखे जाएंगे, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं भी आपको उस तरह के आर्टिकल्स प्रोवाइड करूंगा, तब इस विषय पर मुझे लगता है कि समुचित तरीके से बात हो सकेगी। तो फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं। इनमें से मैं एक हमारे स्टूडेंट हैं दिव्य प्रकाश सिसोदिया, जो उत्तर प्रदेश से हैं, उनको आप दोस्तों आप सबकी ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनका जो सिलेक्शन है उत्तर प्रदेश सरकार के असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स के पद पर हुआ है, दिव्य प्रकाश इसके लिए बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरे जो हमारी ईमेल लिखने वाले मित्र हैं जिनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, वे हैं विजय शेरावत जयपुर से, प्रीति झा, शिवा चौधरी और साहिल गवई। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।